हरे हरे
हरे रामा
रामा रामा हरे 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 कृष्णा। तो कल हमने गीता भगवत गीता बोला था। गीता दो शब्द है, भगवत और गीता। इसमें मुख्य शब्द है भगवत, भगवान के मुखारविंद से ये गीता प्रकट हुई है। गंगा भगवान के चरण से प्रकट हुई है, वो भी पतितों का उद्धार करती है, पति तपावन है। गंगा के पास जाओगे तब पवित्र करेगी, लेकिन गीता आप अपने साथ हृदय से लगा के इस गंगा को रख सकते हैं। ज्ञान गंगा है गीता, ये भक्ति के रस की बहती हुई गंगा है, भगवान के मुख से निकली है। और भगवान ने इसको क्या कहा है, गीता मे हृदयम, गीता मेरा हृदय है, ये भगवान की दिल है। ये भगवान जिससे प्रेम करते हैं उसको देते हैं, तो जिससे भगवान प्रेम करते हैं उसको गीता का उपदेश करते हैं। तो भगवान प्रेम किससे करते हैं, भगवत गीता के 12वें अध्याय में भगवान बार बार कहते हैं, यो मद भक्त समे प्रिय, ऐसा जो भक्त है वो मुझे बहुत प्यारा है, यो भक्त मुझे अति प्रिय है। तो भगवान ऐसे प्रिय भक्तों की बात करते हैं जो भगवान को बहुत प्रिय लगते हैं। दोज हु आर वेरी डियर टू कृष्णा, ही इम्पार्ट देम दिस ट्रांसेंडेंटल नॉलेज ऑफ भगवत गीता विच इज हिज ओन हार्ट, अपना दिल है। तो भगवत गीता देने की आवश्यकता कैसे पड़ी, इसके ऊपर थोड़ी आज चर्चा करेंगे। गीता शरणागति का शास्त्र है। गीता कैसा शास्त्र है, शरणागति, भगवान का शरण लेने का शास्त्र है। लेकिन गीता के लिए लिखा क्या है, क्या शास्त्र है, योग शास्त्र। गीता क्या है, योग शास्त्र। योग का अर्थ क्या होता है, भगवान से जुड़ना, भगवान से हाथ मिलाना, भगवान से अपना संबंध स्थापित करना, उसको बोलते हैं योग। तो भगवान कहते हैं गीता योग शास्त्र है। कैसी विद्या है गीता में, ब्रह्म विद्या। कैसी विद्या है, ब्रह्म विद्या। आपके यूनिवर्सिटी में, स्कूल में, कॉलेज में जो विद्या मिलती है, ये शरीर को चलाने की विद्या है। इस शरीर को कैसे दो टाइम का खाना देना है, और घर कैसे बनाना है, गाड़ी मोटर कैसे खरीदनी है, ये विद्या कॉलेज में मिलती है, यूनिवर्सिटी में मिलती है। लेकिन ये शरीर तो एक मकान की तरह है। मकान का मालिक मकान से ज्यादा मुख्य होता है। मकान या मकान का मालिक दो अलग चीज है ना, घर और घर का मालिक अलग है ना, अलग है ना। ऐसे ये शरीर घर है, इसका मालिक और है। तो ये जो शिक्षा मिलती है ये तो शरीर को चलाने के लिए है, लेकिन शरीर जिसके आधार पे चल रहा है आत्मा, उसका ज्ञान तो कहीं नहीं मिलता है। वो ज्ञान भगवद गीता में है। भगवद गीता में भगवान के साथ संबंध स्थापित करने का ब्रह्म ज्ञान है। क्या है, ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान योग शास्त्र, शरणागति का शास्त्र है भगवद गीता। कौरव और पांडव, वैसे सारे ही कुरु वंश के हैं, कुरु महाराज का वंश है, जिसके नाम से उस जगह का नाम है कुरुक्षेत्र, जहां ये गीता कही गई थी। भगवान ने गीता कहां कही थी, कुरुक्षेत्र में। तो कुरु उसका नाम है, कुरु महाराज कुरु हुए हैं, जिन्होंने उस क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ा यज्ञ किया था, उस क्षेत्र का नाम ही कुरुक्षेत्र हो गया। बाद में आते आते कौरवों में अधर्म बढ़ता गया, तो पांडु एक विशेष ऐसा महात्मा हुआ, तब उसका वंश हो गया पांडु वंश। तो कौरवों के अंतर्गत पांडु के पीछे उसका नाम हो गया पांडु वंश, पांडव। जैसे इक्ष्वाकु ने सूर्य वंश की स्थापना की, लेकिन रघु महाराज बीच में बहुत प्रतापशाली आए तो रघुवंश हो गया। तो इक्ष्वाकु वंश ही रघुवंश है, लेकिन रघु बहुत महात्मा बड़े ऐसे थे तो उसके बाद उसका नाम रघुवंश हो गया। ऐसे कौरवों में पांडु बहुत महान थे तो पांडु वंश हो गया। पांडु राज पांडु को मिला, हस्तनापुर का राज मिला पांडु को, पांडु को राज मिला। धृतराष्ट्र बड़ा बेटा था लेकिन आंखें नहीं थी तो उसको राज करने का अधिकार नहीं था, तो राज मिला पांडु को। पांडु पूरी पृथ्वी के ऊपर विजय प्राप्त की, पूरी पृथ्वी के ऊपर पांडव ने दिग्विजय किया। पांडु महाराज को साफ हो गया कि तुम जल्दी मर जाओगे, तो पांडु ने कहा मैं तपस्या करने जाता हूं, मेरे भाई तुम मेरे राज की देखभाल करना, जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो इनको दे देना। तो धृतराष्ट्र राज की देखभाल करता था। पांडु को कुंती से धर्मराज का आवाहन किया, बुलाया तो उनसे युधिष्ठिर बेटा हुआ। पहले बच्चे संकल्प की शक्ति से हुआ करते थे। ब्रह्मा जी ने आंखें बंद करके कहा मेरे को पुत्र संतान हो जाए, और नारद जी प्रकट हो गए। केवल मन से कहने से सृष्टि बनती थी। भगवान ने कमल के ऊपर कहा ब्रह्मा पैदा हो जाए, ब्रह्मा पैदा हो गया। ब्रह्मा ने सात ऋषि, सप्त ऋषि चत्वारो मनवो मनसा जाता, ये भगवत गीता के दसवें अध्याय में आता है कि सप्त ऋषि चार मनु मेरे मन से उत्पन्न हुए हैं, स्त्री पुरुष से उत्पन्न नहीं हुए। फिर एक समय आया यज्ञ किया जाता था, यज्ञ के अंदर से देवता निकलता था और वो चरु देता था, उससे पुत्र संतान हुआ करता था। ये तो दशरथ महाराज ने यज्ञ किया था, यज्ञ के अंदर से देव पुरुष निकला था अग्निदेव, और यज्ञ का खीर का लोटा दिया था जिससे सीताराम राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का प्रकट हुआ। तो ये प्रकृति पहले मानसिक हुआ करती थी, संकल्प से हुआ करती। जब से आदमी में पवित्रता कम होती गई, शक्ति कम होती गई, तब से स्त्री पुरुष से मिलने से बच्चे होने लगे, ये बहुत बाद की बात है। तो ये देवताओं को कुंती को ये मंत्र मिला हुआ था, किससे? दुर्वासा मुनि से। कुंती को ये वरदान दिया था दुर्वासा मुनि के, तुम किसी भी देवता को बुलाओगे तो वो आ जाएगा। तो कुंती ने शादी से पहले सूर्य देव को बुलाया था, तो कर्ण प्रकट हो गया था। लेकिन कर्ण को कुंती ने बगैर विवाह के बच्चा उसके सामने प्रकट हो गया, तो उसको लोक लज्जा थी, तो उसको नदी में बहा दिया, गंगा में। तो वो कर्ण फिर अधीरथ के घर में चला गया, वो एक सारथी था, उसने कर्ण का पालन पोषण किया, राधे उसकी मां का नाम रहा। फिर पांडु को जब श्राप हो गया था तब कहा पुत्र होना चाहिए, तो कुंती ने कहा मेरे को मंत्र है मेरे पास, तो पहले युधिष्ठिर के धर्मराज से युधिष्ठिर हुआ, फिर इंद्र का आवाहन किया। आवाहन का मतलब है, एक होता है निमंत्रण देना, आप देते हैं ना शादी का इनविटेशन कार्ड, आओ ना आओ आपकी मर्जी, आप जाते हो क्या? कभी जाते हो कभी नहीं जाते हो, लेकिन आवाहन में आना पड़ेगा, आवाहन का मतलब आना ही पड़ेगा। इंद्र का आवाहन किया, इंद्र ने ऐसे शक्ति अपनी थी, अर्जुन प्रकट हुआ। वायुदेव का आवाहन किया, वायुदेव आया, भीम प्रकट हुआ, और तब माद्री को दो अश्वनी कुमार जो वैद्य हैं देवताओं के, नकुल और सहदेव प्राप्त हुई। तो ये पांच पांडव ऐसे देवताओं की संतान है। अब पांडु महाराज का तो जल्दी देहांत हो गया, माद्री उसके साथ सती हो गई, कुंती पांच बच्चों को लेकर हस्तनापुर आई। अब युधिष्ठिर बड़ा था, युधिष्ठिर जब जवान हो गया तो उसको अब युवराज बनाना था, अब धृतराष्ट्र राज छोड़ने को तैयार नहीं था। धृतराष्ट्र का अर्थ क्या होता है? जो राष्ट्र को हड़प कर ले, दूसरे का राज हो, उसको पकड़ के बैठ जाए, छोड़े नहीं, उसको धृतराष्ट्र बोले। इस दुनिया में जो घर को, मकान को, दुकान को, परिवार को पकड़ के बैठता है वो धृतराष्ट्र है, वो अंधा होता है। संसार को पकड़ के बैठ गया है, जिसका है उसको देता नहीं है। तो धृतराष्ट्र का मतलब दूसरे के राष्ट्र को हड़प कर ले। धृतराष्ट्र देने को तैयार नहीं है, उसकी उसका मोह और ममता हो गया अपने बेटे दुर्योधन में। दुर्योधन में इतना मोह और ममता हो गया कि वो चाहता है मेरा बेटा दुर्योधन को राज मिलना चाहिए। तो भीम को मारने का प्रयास किया, विष देने का प्रयास किया, लाक्षाग्रह में पांडवों को जलाने का प्रयास किया कुंती के समेत, लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की रक्षा की। युधिष्ठर और दुर्योधन दोनों को आधा आधा राज बांट दिया। युधिष्ठर के राज इंद्रप्रस्थ मिला, जो अभी दिल्ली है, ये मिला युधिष्ठर को। तब ये जंगल था, भगवान श्री कृष्ण स्वयं ने खड़े होकर और बलराम जी ने हल उठाया और उस पूरे क्षेत्र को हरा भरा बना दिया। मय दानव को बुलाया, बहुत सुंदर सभा बन गई। तब हस्तनापुर, अभी भी हस्तनापुर मेरठ के पास है, हरिद्वार जाते हुए रास्ते में आएगा थोड़ा अंदर, हस्तनापुर अभी भी नाम है, हस्तनापुर वहां था। हस्तना, हस्ती का अर्थ होता है हाथी, जहां बहुत हाथी होते थे युद्ध के लिए, तो उस जगह का नाम था हस्तनापुर। तो ये इंद्रप्रस्थ पांडवों को मिला, हस्तनापुर पे दुर्योधन युवराज बना, धृतराष्ट्र भी राज कर रहा था। सबको निमंत्रण दिया, युधिष्ठिर महाराज ने बहुत बड़ा यज्ञ करना था। तब दुर्योधन वहां आया, ऐसा सुंदर महल बनाया था दानव मयराज ने, मय दानव ने, जहां दिखता था पानी है वहां पानी नहीं होता था, सूखा होता था, और जहां दिखता था सूखा है वहां पानी होता था। तो दुर्योधन एक जगह सूखा दिख रहा है, गया तो पानी में जाके गिरा, तो फिर दोबारा एक जगह पानी दिख रहा था तो कपड़ा ऊपर किया तो वो तो सूखा पड़ा था। तो ऊपर से द्रौपदी हंसी, बोला अंधे का बेटा अंधा। दुर्योधन को बहुत हृदय में क्रोध आ गया, ईर्ष्या आ गई, वो इनसे बदला लेना है। फिर पांडवों को बुलाया हस्तनापुर में, वो कहा आप हमारे साथ जुआ कीजिए। शकुनी मामा कहां से आया था? अफगानिस्तान से। कहां से? जहां से सारे टेररिस्ट आते हैं, ये बड़ा पुराना टेररिस्ट है। ये टेररिज्म पांडवों के जमाने से, शकुनी बड़े से बड़ा टेररिस्ट है, पूरा महाभारत एक शकुनी ने कराया। किसने? शकुनी मामा, शकुनी बड़ा टेररिस्ट था। ये आया था अपनी बहन के साथ, गंधारी के साथ। गंधार का अर्थ होता है कंधार, कंधार काबुल की राजधानी कंधार है, काबुल कंधार अफगानिस्तान। और उसने अपने पिता के हड्डी का पांसा बना के रखा था, बोला सारे इस कौर वंश का नाश करूंगा, ऐसा घर से तैयारी करके आया था। तो जुआ के अंदर पांडव जीतते थे, लेकिन उल्टा पासा करके बोला नहीं हमने जीत लिया, पांडव हार गए, अपने आप को हार गए, द्रौपदी को हार गए। तो द्रौपदी ने कहा कि सुन लो राजा, तुम भी, आप सब सुनो, हारा हुआ व्यक्ति कैसे मेरे को दाव पे लगा सकता है? ये खुद ही हार गया तो मुझे कैसे दाव पे लगाएगा? लेकिन किसी ने नहीं सुनी। दुशासन, दुर्योधन का भाई, द्रौपदी को अंदर से पकड़ के लाया, उसकी साड़ी खींच के उसको नंगा करना चाहता था। द्रौपदी ने पतियों की तरफ देखा, पांच पति दुनिया के वीर पुरुष थे, कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि उस वक्त में वो दास बन चुके थे, बिक चुके थे, हार चुके थे। राजा की तरफ देखा, वो तो पहले से अंधा था, धृतराष्ट्र कुछ नहीं कर पाया। गुरुजनों की तरफ देखा, गुरुजनों ने सर नीचे कर लिया। तब द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर करके कहा, हे गिरधारी, हे कृष्ण, हे माधव, हमारी लाज रखो। तो भगवान श्री कृष्ण द्वारका से भागते हुए साड़ी का रूप करके द्रौपदी की लाज बचा ली। 10,000 गज बल घट्यो, गज कहते हैं हाथी को, 10,000 हाथियों की ताकत थी दुशासन में, 10,000 गज बल घट्यो, घट्यो ना 10 गज चीर, ये 10 बाल का साड़ी खत्म नहीं हुई, दुशासन खेच खेच के थक गया। भगवान ने द्रौपदी की लाज रख ली, 12 साल के लिए पांडव वनवास चले गए। एक साल पांडव क्या अज्ञातवास में रहे, कोई पहचान न सके। तब तो युधिष्ठिर महाराज महाराज विराट के वहां चौपड़ खेलने वाला बन गया, भीम वहां रसोईया बन गया, अर्जुन तो तब हिजड़ा बन गया एक साल के लिए, और विराट की बेटी को नृत्य सिखाने लगा उत्तरा को। नकुल और सहदेव घोड़ा घोड़ा और गाय को देखने लगे। एक दिन विराट के राज में, विराट का सेनापति था ना, उसका नाम था क्या नाम था, किसी को याद है? महाराज विराट का सेनापति, अरे कृष्णा, वो विराट का साला भी था, उसकी बहन थी विराट के घर में, कीचक, उसका नाम था कीचक, कीचक, कीचक। द्रौपदी, द्रौपदी वहां कैसे छुप के बैठी थी, हरे कृष्णा, द्रौपदी वहां जो रानी थी उसके बाल बना दी थी, उसका श्रृंगार करती थी, सैंद्री बन गई थी। द्रौपदी बहुत सुंदर थी, द्रौपदी भी मां बाप से पैदा नहीं हुई थी, यज्ञ से पैदा हुई थी, उसका नाम है याज्ञनिका है, ये तो यज्ञ किया था द्रौपदी महाराज से, उसके अंदर से प्रकट हुई थी द्रौपदी। तो द्रौपदी को कीचक सेनापति बुरी नजर से देखने लगा। द्रौपदी ने अर्जुन और भीम को कहा कि ये तो हमारे को बुरी नजर से देखता है, बोला इसको बोलना तुम रात को हमसे मिलने आना, जहां बड़ा हाल है ऐसा, वहां मैं सिखाता हूं ना उत्तरा को, वहां इसको बुलाना। तो द्रौपदी ने कहा, फिर बोला फिर आप कुछ नहीं करना। द्रौपदी की साड़ी भीम ओढ़ के बैठ गया, द्रौपदी तो चली गई, ये कीचक अंदर आया, इसने समझा द्रौपदी की साड़ी ऊपर की, तो भीम बाहर से निकला और मारना शुरू किया, और तब अर्जुन ने बैठ के ढोल पीटना शुरू किया कि बाहर आवाज ना जाए लड़ाई का। बहुत ज्यादा लड़ाई हुई तो कीचक मारा गया, कीचक मर गया, तो यह समाचार पहुंच गया पूरे भारतवर्ष में, कीचक को गंधर्वों ने मार दिया। दुर्योधन बोलता है कीचक को मार सकते हैं केवल चार आदमी, इतना वो बलवान है, इतना शक्तिशाली है पृथ्वी के ऊपर, एक तो बलराम जी कीचक को मार सकता है, दूसरा मैं मार सकता हूं वो मेरे बराबर का है, तीसरा मामा शल्य मार सकता है, चौथा भीम। बलराम जी तो द्वारका से गए नहीं, शल्य मामा तो अपने देश में है, मैं लड़ाई में क्या, भीम ने मारा होगा, इसका मतलब पांडव यहां छुपे। कीचक के मरने के समाचार के ऊपर पता लगा कि पांडव यहां छुपे हुए हैं, हरे कृष्णा। और फिर पांडवों ने आक्रमण कर दिया विराट नगर के ऊपर, दो तरफ से आक्रमण किया। पहले तरफ से किसी को कहा कि आप जाके आक्रमण करो, दूसरे को सुश्र, क्या नाम है उनका, दो भाई जिनको कहा कि आप जाके विराट नगर के ऊपर आक्रमण करो, हरे कृष्ण बोलो। आप लोग शास्त्र नहीं पढ़े हैं, कल हमने कहा था, टुडेज मेंटेलिटी, यस्टरडे आई टोल्ड एवरीबॉडी इज परचेजिंग मोबाइल एंड अलॉन्ग विद मोबाइल कम्स ए स्मॉल कैटलॉग बट नोबडी रीड दैट बुक, इज इट ट्रू आर नॉट, एवरीबॉडी सेज यस। सो सिमिलरली when we are created in this planet, on this planet, Brahma ji also gave the books, but nobody is reading those. This is, ये हमारा ऐसा हो गया, अरे ये भगवत गीता पढ़ना है आपको, ये आपका धन है। लोग कहते हैं भारत बहुत गरीब हो गया, अरे भारत गरीब होता तो दुनिया के दूसरे लोग भारत के ऊपर आक्रमण क्यों करते, तुर्क क्यों आए, अफगान क्यों आए, अर्गोन क्यों आए, ब्रिटिश के अंग्रेज क्यों आए वहां, क्योंकि वहां धन था, हम सुखी थे, हम ही समृद्ध थे। अरे हमारा धन तो ये आध्यात्मिक था, इसको भुला के हम गरीब हो गए हैं, आपका धन ये है। ये एक चार श्लोक आपको इसके आते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, लोग आपके चरणों में बैठ के आपकी सेवा करेंगे, आपकी आपके द्वारा भगवान के पास जाने के लिए मार्गदर्शन पूछेंगे। पूरे दुनिया के अंदर जाके देखो, ये महात्मा हमारे पीछे आपको दिख रहे हैं, इस्कान के संस्थापक आचार्य श्री कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभयचरणार भक्ति विधान स्वामी शिला प्रभुपाद, 70 साल की उम्र में भारत से पानी के जहाज में गए थे, केवल इस गीता के शास्त्र के श्लोकों के द्वारा पूरे विश्व के अंदर एक आध्यात्मिक आंदोलन स्थापित कर दिया, और उसका कारण है कि आज भी यहां बैठ के आप भगवद गीता सुन रहे हो। ये एक व्यक्ति के चार श्लोकों की शक्ति है। तो ये आपका धन है, इस धन को संभाल के रखोगे तो आपका जीवन सुरक्षित है। इससे वंचित हो जाओगे, दुनिया का कितना भी धन है ये सब यहां रह जाएगा, कुछ साथ जाने वाला नहीं है। गाड़ी खड़ी रह जाएगी, तिजोरी भरी रह जाएगी, जब जाएगा तो साथ कुछ नहीं जाएगा। जे इसके चार शब्द याद होंगे तो कृष्ण की स्मृति याद जाएगी और कुछ याद नहीं है। तो कीचक मारा गया, सुश्रमा वो दोनों भाई त्रिगत नरेश वो उन्होंने आक्रमण किया तो सारी सेना विराट की वहां गई। तो द्रौपदी ने कहा कि इसको ले जाओ, ये जो वल्लभ है ना जो रोटी पकाता है भीम, ये तुम्हारा साथी बनेगा। और युधिष्ठिर महाराज पासा खेलता था उसको भी साथ भेजा, उनको तो हरा दिया, पकड़ लिया था। दूसरी तरफ से पूरे पांडव से कौरव सेना ने आक्रमण किया, भीष्म पितामह उस सेना में थे, कर्ण था, युद्धर्योधन था, कृपाचार्य था, अश्वस्थामा था, सारे उन्होंने आक्रमण किया। अकेला घर में उत्तर कुमार था, एक बेटा विराट का, उसने बोला मैं जाऊंगा। क्षत्रिय कभी डरते नहीं थे, कोई ललकारता था अकेला लड़ने के लिए जाया करता था। उत्तर ने कहा मैं जा रहा हूं। द्रौपदी ने कहा ये जो मेरे को सिखाता है ना उत्तरा को, जो गाना सिखाता है ना, नृत्य सिखा रहा है, ये ब्रहनाला, ये अर्जुन, ये बहुत अच्छा सारथी है, इसको ले जाओ, तुम्हारा रथ चलाएगा। अब अर्जुन आगे बैठा है हिजड़े के कपड़े पहने हुए, एक साल के लिए शराप था अर्जुन को, वो इंद्र जब गया था स्वर्ग में गया था तब ये शराप मिला था उसको, एक साल के लिए हिजड़ा बन जाएगा। अब ब्रहनाला आगे बैठी है, रथ चला रहा है, पीछे उत्तर कुमार बैठा है। सामने सेना में भीष्म पितामह के ऊपर ध्वजा देखा, झंडा ऊपर देखा, द्रोणाचार्य का ऊपर से झंडा देखा। उत्तर कुमार ने बोला इनसे लड़ाई मैं कैसे करूंगा। वो उतरा, अर्जुन ने बोला नहीं नहीं लड़ाई करनी है, बोला नहीं मैं नहीं करूंगा। भागने लगा, अर्जुन ने पकड़ा उसको, बोला तुम लड़ोगे नहीं तो तुम रथ चलाओ, मैं लड़ता हूं। अब अर्जुन ने आवाहन किया अपने रथ का, अपने अस्त्र शस्त्र का, गांडीव आया, अर्जुन का शंख आया, अर्जुन ने अपना देवदत्त शंख बजाया। सामने वालों ने कहा ये अर्जुन का शंख है, लोग शंख बचाते थे ना, किसका शंख है पहचानते थे, ये भीष्म का शंख बज रहा है। वो जो बजाने का तरीका था वो दूसरे को पता लग जाता था, ये मुश्किल है क्या? आपको आजकल भी पता लगता है ना, आपके मोबाइल की घंटी बजती है आपको पता लगता है ना मेरा बज रहा है, हाँ पता लगता है ना, ये तुम्हारी घंटी बज रही है पता लगता है कि नहीं लगता है, आज भी लगता है ना। तो ऐसे उस जमाने में शंख का पता लगता है, ये किसका शंख है। अकेले अर्जुन ने सब पांडवों की सेना को, कौरवों की सेना को हरा दिया था। तब दुर्योधन ने कहा हमने इनको पकड़ लिए, अभी 12 साल पूरे नहीं, एक साल पूरा नहीं हुआ। पंडित जी ने बोला साल पूरा हो गया, तिथि पूरी हो गई, लेकिन दुर्योधन मानने को तैयार नहीं था। संजय आया, संजय को भगवान ने कह के मोकला, कृष्ण ने कहा कह के भेजा, संजय दुर्योधन को धृतराष्ट्र को कहना जो अर्जुन का मित्र है मेरा अमित्र है, जो अर्जुन का शत्रु है मेरा शत्रु है, मैं और धनंजय एक हैं, दो नहीं हैं, मैं अर्जुन के साथ रहूंगा। फिर भगवान श्री कृष्ण स्वयं चले गए हस्तनापुर संधि के दूत बनके कि लड़ाई नहीं हो। वहां गए, बताया उनको पांडवों को 5 गांव दे दो, वो राज करेंगे, सब आप ले लो। दुर्योधन ने कहा सुई की नोक के ऊपर जितनी जमीन मैं नहीं दूंगा पांडवों को लड़ाई के बगैर। और तब दुर्योधन ने कहा इसको बांधो कृष्ण को, तो कृष्ण ने वहां विराट रूप थोड़ा सा दिखाया, कोई कृष्ण को पहचान नहीं सका सवाय भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के। कृष्ण वहां से अपनी बुआ कुंती के पास आया, कुंती ने चिट्ठी लिख के दी, बोला कृष्ण भीम और अर्जुन को कहना कि क्षत्रियाणी जिस दिन के लिए पुत्र को जन्म देती है वो दिन आ गया है, जिस दिन के लिए क्षत्रिय मां पुत्र को जन्म देती है वो दिन आ गया है, अब धर्म का युद्ध आपको करना पड़ेगा। चिट्ठी लिख के दी कुंती मां ने, विदुर के घर गया, विदुरानी ने बहुत स्वागत किया भगवान श्री कृष्ण का, वहां तो भगवान केले का छिलका खाया और केला ही फेंक दिया, बड़ा आनंद आया, भगवान ने 56 भोग से ज्यादा आनंद लिया वहां। और तब युद्ध होना निर्णय हो गया, अब सब चले गए भगवान श्री कृष्ण से सहायता लेने के लिए युद्ध की। दुर्योधन भी गया द्वारका में, भगवान श्री कृष्ण आंखें बंद करके लेटने का ड्रामा कर रहे थे, एक कुर्सी रखी हुई थी भगवान के सर के पास, दुर्योधन जाके कुर्सी के ऊपर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद अर्जुन अंदर आया, अर्जुन ने देखा भगवान आंखें बंद की हुई है, आराम में है, अर्जुन भगवान के चरणों के पास बैठ गया। भगवान ने आंखें खोली, अर्जुन को देखा, बोला पार्थ तुम कैसे? दुर्योधन कहता है पहले मैं आया हूं महाराज। भगवान ने ऐसे टेढ़ी आंख से देखा, ओ आप भी पधारे हैं। भगवान ने टेढ़ी आंख से दुर्योधन को देखा, बोला कैसे पधारे? बोला महाराज युद्ध होना अनिवार्य है, युद्ध तो होगा, अब हम आपसे सहायता लेने आए हैं। भगवान ने कहा अच्छी बात है, आप कैसे आए अर्जुन? बोला हम भी आपसे सहायता लेने आए हैं। तो भगवान ने कहा देखो निर्णय, एक तरफ मेरी चतुरंगनी सेना, मेरी सारी सेना जिसमें रथ है एक अंग, हाथी है दूसरा अंग, घोड़े है तीसरा अंग, और पैदल सेना है चौथा अंग, इसको बोलते चतुरंगनी सेना, और कृतवर्मा सेनापति एक तरफ, दूसरी तरफ मैं अकेला और अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन अर्जुन छोटा है, पहले अर्जुन चुनेगा, पहले सिलेक्शन अर्जुन करेगा। अब अर्जुन की शरणागति, ये पहली शरणागति है अर्जुन की, ये अर्जुन की पहली शरणागति है। युद्ध से पहले, युद्ध के लिए सेना जरूरी है कि एक व्यक्ति जरूरी है जो लड़ेगा? नहीं, सेना जरूरी है, लेकिन अर्जुन ने कहा नहीं, लड़ने को तो मैं अकेला काफी हूं, लेकिन मेरे को कृष्ण चाहिए। अर्जुन ने कहा मैं आपको चुनता हूं। दुर्योधन बहुत खुश हो गया, बोला अच्छा हुआ मेरे को सेना मिल गई, कहीं इसने सेना ली होती तो मैं इस ग्वाले को क्या करता, इसको क्या करूंगा ले जाके, जब लड़ेगा नहीं तो लड़ाई में। कृष्ण ने पूछा अर्जुन तुमने मुझको क्यों आपने ले लिया? बोला बस आप मेरे साथ हैं तो मुझे किसी बात की परवाह नहीं, बस एक काम करना, आप हमारे रथ का संचालन करना, सारथी बन जाना। भगवान ने कहा ठीक है, आपने मेरा शरण, मेरे को चुना है तो मैं आपकी सारथी बनने की सेवा करूंगा। अब सारथी कृष्ण है, अर्जुन रथी है। रथी किसको बोलते हैं? ऊपर बैठता है, सारथी नीचे बैठता है। रथी आदेश देता है राइट चलो, लेफ्ट चलो, आगे चलो, और सारथी आज्ञा का पालन करता है। भगवान आज्ञाकारी बन गए। लेकिन अब देखो गीता का यहां बहुत बड़ा सुंदर दृश्य, अर्जुन बैठा है रथी बन के, भगवान सारथी बन के बैठा है, और अर्जुन भगवान को आदेश देता है, सेन्योर उभ्योर स्थाप्य मे रथ अच्युत, हे अच्युत दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ खड़ा करो। भगवान ने मुड़ के देखा, आ गया सर आंखों के ऊपर, ठीक है हम आपका रथ ले चलते हैं। लेकिन भगवान ने पूछा क्यों भाई, क्या बात है? निरीक्षे हम, मैं देखना चाहता हूं, योधो कामान, जो लड़ाई के लिए कौन आए, दुर्बुद्धे धृतराष्ट्र से, ये दुर्योधन दुर्बुद्धि के संग में कौन आया है? दुर्बुद्धि दुर्योधन कौन उसके संग आया, मैं देखना चाहता हूं। भगवान ने कहा अच्छा अब देखना चाहते हैं, चलो दिखाता हूं। भगवान ने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लाके खड़ा किया। कहां खड़ा किया? भीषम द्रोण पर मुक्त सर्वेशम च मईक्षताम। भगवान ने रथ को कहां खड़ा किया? भीषम और द्रोण के सामने। भीषम और द्रोण कहते हैं ये लड़ाई का नेम तो नहीं है, ये बीच में कहां आ रहा है? अब न कौरवों के तरफ रहा न पांडवों की तरफ, बीच में रथ खड़ा हो गया, मध्य स्थल बीच में खड़ा हो गया। तब भगवान कहते हैं पश्येतान कुरुनीति, अर्जुन देखो देखो तुम्हारे सामने अपने परिवार के लोग हैं, ये तेरा गुरु खड़ा है सामने, वो तेरा दादा खड़ा है, देख लो। भगवान ने अर्जुन को 25वें श्लोक में इशारा किया कि देखो कौन है सामने। अब अर्जुन घर से लड़ने के लिए तैयार होके आया था, लेकिन अपने रिश्तेदारों को देखकर कहता अभी मैं लड़ाई नहीं करूंगा, ये मेरे रिश्तेदार है, वो मेरा चाचा, मेरा भाई, मेरा बंधु, मेरा सुल्ला साला, मेरा ससुर, इनको मारना ठीक नहीं। भगवान ने बोला क्या बोलता है? बोला मैं नहीं लड़ूंगा। कैसे नहीं लड़ेगा? मेरे को घर से लड़ाई के लिए लाया है, अब तुम बोलते हैं मैं नहीं लड़ेगा, ये कैसे कह रहे हैं? तो ये दृश्य आप देखो कि ऐसे कुरुक्षेत्र की लड़ाई इस तरीके से अर्जुन ने यहां का। अब थोड़ी देर के लिए आगे चलते हैं जहां से गीता शुरू होती है। पहला श्लोक धृतराष्ट्र पूछता है संजय को, क्या बोलता है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पांडवास चैव किमुक्ता कुर्वत संजय। संजय धृतराष्ट्र का सचिव है, सेक्रेटरी है और उसका सारथी भी है। संजय एक दिन व्यास देव आए, धृतराष्ट्र को बोला बेटा युद्ध होना अनिवार्य है, तुम देखना चाहो तो मैं तेरे को ऐसी विद्या देता हूं कि तुम देख सकते हो। धृतराष्ट्र ने बोला अपने कुल को नाश होता मैं देख नहीं सकता। तो संजय को व्यास ने दिव्य दृष्टि दी, उसके हृदय में टेलीविजन फिट कर दिया। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में जो भी होता है उसकी रनिंग कमेंट्री संजय हस्तिनापुर में बैठ के करता है, क्या हो रहा है, किसने तीर चलाया, कौन गिरा, कौन खड़ा है, उधर बैठ के 100 मील दूर बैठकर, 150 किलोमीटर दूर बैठकर संजय वहां का सारा हाल देख के बता रहा है। पहले कोई आदमी नहीं मानते, अब तो आप मान सकते हैं ना, टेलीविजन के ऊपर क्रिकेट की कमेंट्री सुनते हो, है कि नहीं सुनते? लेकिन लाइट चली जाएगी तो टीवी बंद तो नहीं आएगा, लेकिन ये हृदय का टेलीविजन था, हृदय का दूरदर्शन था, ये बड़ा यंत्र मंत्र से बनता था, ये यंत्र मंत्र के द्वारा स्थापित किया हुआ था संजय के हृदय के अंदर। धृतराष्ट्र ने कहा कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है, वहां माम का मेरे, अब माम का कहने का मतलब मेरा, मेरा जो करता है वो माम का है, पांडवश्चैव, पांडव का मतलब है, पांडव का मतलब है ध्वल, साफ, ईमानदार, वो दोनों रिश्तेदार लड़ने के लिए वहां इकट्ठे हुए, उन्होंने क्या किया, विशेष क्या हुआ वहां बताओ, क्या खास बात वहां हुई है? ये प्रश्न पता है कौन से दिन पहुंचा पूछा है? 10 दिन तक संजय कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में था, 10वें दिन पे भीष्म पितामह नीचे गिरा था, तीरों की सेजा के ऊपर गिर गया, संजय भागता हुआ हस्तनापुर आया, कहा भीष्म पिता गए, गिर गए। तब धृतराष्ट्र पूछता है बताओ मुझे, पहले से बताओ क्या क्या हुआ वहां। तब संजय बताता है माम का आपने पूछा है ना, तो पहले आपके बेटों की बात करता हूं। संजय वाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचारम उपसंगमय राजा वचनम अब्रवीत। अब कहते हैं तुम्हारा बेटा जो है ना दुर्योधन, वो पांडवों की सेना को देखने के बाद अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और जाके क्या बोलता है, पश्येतान पांडु पुत्रण, गुरु को आज्ञा दे रहा है, गुरु जी देखो वो पांडवों की सेना कितनी अच्छी तरह से खड़ी की है, मालूम है किसने खड़ी की है? तव शिष्येण द्रुपद पुत्रेण धीमताम, वो बुद्धिमान, तो आपका शिष्य है ना महाराज द्रुपद का बेटा, उसने कैसी सेना खड़ी करी है, देखो तो सही। ये राजनीति बोल रहा है दुर्योधन, अपने गुरु को आदेश दे रहा है, ये अपराध हो गया। गुरु को कहता है देखो और उसको उंगली से ऐसे ये चुंटी मार रहा है, तुम्हारा शिष्य है, बुद्धिमान है, द्रुपद का बेटा है। द्रोणाचार्य और द्रुपद दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, गुरुकुल में, दोनों मित्र थे, साथ खाते थे, साथ उठते थे, साथ बैठते थे, बचपन में बोलते थे जो तुम्हारा वो मेरा आधा आधा, जब मैं राजा बनूंगा आधा राज तेरे को दूंगा। द्रुपद राजा बन गया, द्रोणाचार्य को बेटा हुआ अश्वत्थामा, घर में दूध था नहीं, बेटा रो रहा था, माँ ने पानी में आटा डाल के दे दिया, बेटा दूध पियो, द्रोणाचार्य को रोना आ गया, बोला मेरे बेटे के पीने के लिए दूध नहीं है, मेरा द्रुपद मित्र था उसके पास जाता हूं। द्रुपद के पास जाता है पांचाल में, कहता है मैं तेरा मित्र हूं आधा राज दो। द्रुपद बोलता है बचपन की बातों को अभी कहां लेके आया, बचपन की बातें खत्म हो गई, अभी आधा राज किसी को कोई देता है क्या? तुम्हें चाहिए 2 किलो 2 किलो दूध तुम्हारे घर भेज देंगे, तुम्हारा गाय चाहे तो ले जाओ। द्रोणाचार्य को बहुत बुरा लगा, ब्राह्मण था, मन में आया कि नहीं इसने हमारा अपमान किया है। गया हस्तनापुर में पांडवों का और कौरवों का गुरु बना, उनको अस्त्र शस्त्र विद्या सिखाई। बोला गुरु दक्षिणा क्या? बोला द्रुपद को युद्ध में जाके बगैर सेना नहीं ले जाए, अकेला कोई जाके बंदी बना के लाए। अर्जुन द्रुपद को बंदी बना के लाया अकेला। अब तब द्रुपद को कहता है द्रोणाचार्य, हम मित्र थे ना, तुमने कहा था आधा राज मेरा आज तुम्हारा, ऐसे कहा था ना, तो मैं तुम्हारे पास आया तुमने तो नहीं दिया ना, अब तो तुम बंदी हो, तुम्हारा सारा राज मेरा हुआ ना, आधा राज मैं तेरे को देता हूं, जाओ तुम राज करो और आधा राज मेरे बेटे अश्वत्थामा को देता हूं। तो द्रुपद जब घर गया तो अभी क्षत्रिय था, इसको क्रोध आ गया, इसने बोला इस ब्राह्मण ने हमारा अपमान किया है, यज्ञ करूंगा और यज्ञ से इस ब्राह्मण को मारे ऐसा पुत्र उत्पन्न करना है। यज्ञ शुरू हुआ, यज्ञ से द्रौपदी पैदा हुई और फिर दृष्टद्युम्न यज्ञ से पैदा हुआ। वो दृष्टद्युम्न जो पैदा हुआ ये द्रोणाचार्य को मारने के लिए यज्ञ से पैदा हुआ था, और इसकी बात कह रहा है कि देखो ये तुमको मारेगा वही है सामने देख रहे हो ना, ये उसको क्रोध दिलाने के लिए। लेकिन देखो ब्राह्मण कितने महान हुआ करते थे, दृष्टद्युम्न शिक्षा के लिए द्रोणाचार्य के पास आया। द्रोणाचार्य जानता था कि ये मेरे मारने के लिए उत्पन्न किया है, मेरे शत्रु का बेटा है, लेकिन फिर भी उस ब्राह्मण उदार दिल ने उसको वैसे ही शिक्षा दी जैसे अपने बेटे अश्वत्थामा को दी थी। कितने बड़े उदार हुआ करते थे इस भारत संस्कृति, वैदिक संस्कृति के इन महान लोगों का चरित्र सुनने से कितना दिल खुश होता है। कितने उदार लोग हुआ करते थे, जानते थे, लड़ाई में खड़ा था भीष्म, मालूम था कि मैं यहां मरने के लिए आया हूं। द्रोणाचार्य को मालूम था कि मुझे मारा जाऊंगा मैं, कर्ण को मालूम था कि मैं मरने आया हूं, लेकिन फिर भी खड़े थे लड़ने के लिए, जानते हुए भी खड़े थे। कितने बड़े ये महान व्यक्ति हुआ करते थे उस धरती के ऊपर। दुर्योधन ने कहा महाराज कि देखो इनको, इनकी सेना का हाल तो देखो, भीम अर्जुन समायुद्धे, भीम और अर्जुन के समान बहुत इनके पास सेना में लोग हैं। दृष्टकेतु चेकितान काशीराजस्य वीरवान प्रोजित कुंती भोजस्य चैभ्यस्य नरपुंगव, ये देखो तो सही कितने कितने इनके साथ है, महारथी इनके साथ है, द्रौपदस्य सात्यकी पराजित, अरे ये सब इनके साथी हैं, लेकिन हमको कम नहीं समझो, अपनी सेना की बात करता है। तब तो बड़ी प्रशंसा करता है महाराज द्रोणाचार्य, भवान आप है ना हमारे साथ, भीष्मश्च कर्णश्च समन्तंजय अश्वत्थामा विकर्णश्च, अरे हमारे साथ आप हैं, भीष्म पितामह है, कर्ण है, विकर्ण है, अश्वत्थामा है, कृपा आचार्य है, हमारे पास कौन सी कमी है, हम कम थोड़ी है, भीष्म पिता हमारे सेनापति है, भीम कहां भीष्म की बराबरी करेगा। अब ऐसे करो आप सब भीष्म की रक्षा करो। भीष्म ने कहा अरे मेरी रक्षा करो, मैं आपकी रक्षा करूं कि आप मेरी करो। तो दिल बढ़ाने के लिए संजन हर्थन कुरु वृद्ध पितामह संगनादम विनद्योचय, और शेर की तरह अपना शंख बजाया भीष्म पितामह ने। अब यहां सिर्फ ध्यान दो कि शंख पहले किसने बजाया, कौरवों ने, भीष्म पितामह ने। तो लड़ाई किसने की, कौरवों ने, पांडवों ने शंख नहीं बजाया, लड़ाई की शुरुआत पांडवों ने नहीं की, करनी किसको चाहिए थी, राज पांडवों का हड़प किया दुर्योधन ने, तो पांडवों को लड़ाई शुरू करनी चाहिए ना अपने राज लेने के लिए। पांडव ने लड़ाई शुरू नहीं की, पहला शंख बजाया किसने, भीष्म पितामह ने, सिंहनादम विनद्योचय शंखम तद्मौ प्रतापवान तत्शंखश्च भैरवश्च पणवान गौमुखः। तब तो चारों ओर से बगल बजने लगे, बहुत बड़ा शोर होने लगा। तब दूसरी तरफ पहला शंख किसने बजाया, इसके ऊपर ध्यान दीजिए, अर्जुन नहीं बजा रहा है, युधिष्ठिर नहीं बजा रहा है, दृष्टद्युम्न सेनापति नहीं बजा रहा है, सब देख रहे हैं कृष्ण क्या कर रहा है देखे। तब कृष्ण ने शंख उठाया, पांचजन्यम ऋषि केशो, पांचजन्य का अर्थ होता है जनता की राय, पांच पैंच होते थे ना पुराने जमाने, पैंच पांच बड़े गांव के लोग उनको पैंच बोलते थे, उनकी राय होती थी सारे गांव की राय। तो भगवान ने जनता की राय क्या है ये बात किया, पांच जन्यम ऋषि केशो, भगवान ने अपना शंख बजाया, भगवान का शंख बजते अर्जुन ने अपना शंख फूंका, देवदत्तम धनंजय, जो भगवान के द्वारा उसको दिया हुआ शंख था, जो भगवान ने बड़े प्रसन्न होके जब कैटभ नाम के राक्षस को मारा था तब भगवान ने इसको ये स्पेशल शंख दिया था, देवदत्त, देव मतलब भगवान के तरफ दिया हुआ। पौंड्रम शंख माओ शंखाओ धनमाओ भीम विरको धरा, फिर भीम ने शंख बजा, अनंत विद्यम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर, तो युधिष्ठिर महाराज ने अनंत विजय कहा, हमारी नहीं अनंत की विजय होगी, भगवान श्री कृष्ण की विजय होगी, उन्होंने शंख बजाया है। तो ऐसे सबने अपना अपना शंख बजाया। तो ये युद्ध की शुरुआत किसने की? कौरवों ने। और पांडवों की तरफ से शंख किसने बजाया? भगवान श्री कृष्ण ने। तो भगवान ने पहले ही घोषणा कर दी कि विजय, भगवान के विष्णु के हाथ में चार चीजें होती है, क्या होता है? शंख, चक्र, पदम और गदा। शंख होता है भक्तों की विजय की घोषणा करने के लिए, भगवान शंख बजाते हैं अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए। गदा तो गदा और चक्र के द्वारा शत्रु को मारते हैं, दैत्यों को मारने के लिए होती है। तो भगवान ने शंख बजाया और तब अर्जुन को, अर्जुन ने आदेश दिया भगवान को, दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करो, भगवान ने सेनाओं के बीच में खड़ा किया और तब भगवान ने इशारा किया, देखो तुम्हारे रिश्तेदार हैं। अर्जुन के हृदय में मोह उत्पन्न हुआ, कृपा आ गई, फिर बोला इनको मैं नहीं मारूंगा, अरे इनको इनको मारने से पाप लग जाएगा, इनको मारना अपराध है, बस इनके खून से लदा हुआ राज मैं नहीं करना चाहता हूं, और इनके मरने से कुल धर्म नाश हो जाएगा, जाति धर्म नाश हो जाएगा, कुल की स्त्रियां प्रदूषित हो जाएंगी, स्त्री शु दुष्टा सुवारषण जायंती वर्ण शंकर, और फिर समाज के अंदर वर्ण शंकर आतंकवादी पैदा हो जाएंगे, टेररिस्ट पैदा हो जाएंगे, जिनके पता भी नहीं है बाप कौन है माँ कौन है, ऐसे लोग होते हैं उनको वर्ण शंकर कहते हैं, ये पैदा हो जाएंगे संसार में। और ये कहते हुए अर्जुन को बुखार आ गया, बेपतुश्च शरीरे में रोमहस्य जायते त्वच पई दहते, मेरी मेरी चमड़ी जल रही है, मेरा मुख शुष्क हो गया है, मेरा माथा घूम रहा है। तो ये बुखार में ऐसे होता है ना, माथा घूमता है, मुंह खुश्क होता है, सारी चमड़ी जलने लगती है, बुखार आ गया। ये बुखार बच्चों को एग्जाम से एक दिन पहले बुखार आता है ना, जिस दिन परीक्षा होती है उससे एक दिन पहले बच्चों को बुखार आता है ना, वो डर का बुखार आता है। अब इसको कृपा का बुखार आ गया। अर्जुन कहता अब तो मैं लड़ाई नहीं करूंगा, बस अब लड़ाई मेरे से नहीं होगी। उपविशत, अब अर्जुन जो पीछे बैठा था रथी की जगह पे, वहां से उतर के नीचे आया। उपविशत मतलब आगे जहां घोड़े बांधते हैं, अब कृष्ण के सामने आके बैठ गया और पीठ हो गई कौरवों की तरफ। अब बोलता है मैं धनुष को नीचे रखता हूं, मैं लड़ाई नहीं करूंगा। भगवान कहते घर से मुझे लाया है लड़ने के लिए, अब तुम लड़ाई नहीं करेगा। बच्चों मैं तुम्हारे को लड़ाई करने के लिए अभी शिक्षा देता हूं, तुम उठेगा और लड़ाई करेगा। तो ये पहला अध्याय भगवद गीता का, अर्जुन को क्या हो गया? कृपा आविष्ट। लेकिन भगवान इसको कहते हैं क्लेब्य, ये तो तुम्हारे अंदर कोई दुर्गुण आ गया है। अर्जुन स्वयं कहते कार्पण्य दोष, ये मेरे अंदर कृपणता आ गई है। लेकिन अर्जुन का यह हाल है कि अर्जुन को क्या हो गया? विषीदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन, अभी अर्जुन को विषाद हो गया। विषाद का क्या अर्थ होता है? ऐसी मन की स्थिति, शरीर की स्थिति जिसको स्वयं ठीक न करे, किसी और की सहायता की जरूरत पड़े। जैसे बीमार होता है ना आदमी, तो डॉक्टर के पास जाएगा तब ठीक होगा। तो अब अर्जुन विषाद में हो गया, रोने लगा भगवान के सामने, आंखों से अश्रु आए। दूसरे अध्याय का पहला श्लोक है, संजय बोलता है। संजय कहता है मैं देख रहा हूं, स्लो मोशन में संजय ने अपनी कैमरा फिट की कृष्ण और अर्जुन के ऊपर, और फिर केवल अर्जुन को देखा, स्लो मोशन में दिखाया अर्जुन को। क्या दिखाता है? संजय वाच तंग तथा कृपयाविष्टम अश्रु पूर्णाकुलेक्षणम विषीदंतम इदम वाक्यम वाच मधुसूदन। तंग तथा उसके बाद कृपया आविष्टम, अर्जुन के ऊपर कृपा का आवेश हो गया है। थोड़ी देर के लिए अर्जुन के अंदर हृदय में कृपा भर गई है। तो कैसे आपको लगा कृपा आ गई है? अश्रु पूर्णा कुलेक्षण, आंखों से आंसू बह रहे हैं। आंखें लबालब आंसुओं से भर गई है. आंसू, द टीयर्स आर फ्लोइंग फ्रॉम द आईज ऑफ अर्जुना. विषीदंतम, और मन विषाद ग्रस्त हो गया है. अब धृतराष्ट्र मुस्कुराने लगा, अंधा था ना, देख तो नहीं रहा था. बोला अर्जुन, अब अर्जुन रो रहा है ना, अब तो लड़ेगा नहीं ना, तो मेरे बेटे तो जीत ही जाएंगे. लेकिन संजय को तो आंखें थी, उसने देखा धृतराष्ट्र बहुत खुश हो रहा है. तब का मधुसूदन उवाच, का मधुसूदन ने कुछ बोला. इस कहने का भाव क्या था कि आप खुश मत हो महाराज, ये मधुसूदन है ना, जैसे मधु राक्षस को मारा था, ये अभी थोड़ी देर में अर्जुन की कृपा को हटा देगा, अर्जुन उठेगा फिर लड़ेगा, तुम खुश मत हो. ये मधुसूदन संबोधन बहुत बड़ा आनंद का है. तो ऐसे यहां पहला अध्याय समाप्त हुआ, दूसरा अध्याय शुरू हुआ. दूसरे अध्याय में अर्जुन हाथ जोड़ के कहेगा भगवान मैं आपका शिष्य हूं, ये अर्जुन की दूसरी शरणागति है. तब भगवान गीता बोलना शुरू करेंगे. और इससे आगे आपको सुनना है तो कल और परसों पिच रिविया में सत्संग करेंगे, आप आ सकते हैं, आपका स्वागत है, आपको निमंत्रण है. लेकिन कल हमने आपसे वायदा किया था कि आप एक तो यज्ञ घर में रोज करेंगे, भगवान का नाम लेने का 7 मिनट लगेंगे घर में आपको एक माला जपने में. यज्ञ में तो पंडित जी आता है 2-2 घंटे बिठा देता है, लेकिन आप 1-15 मिनट में 2 बार यज्ञ कर सकते हैं. और दूसरा हमने आपको विनती की थी कि ये भगवान की वाणी जो भगवान से भिन्न नहीं है, भगवान और भगवान के वचनों में कोई अंतर नहीं है, कल हमने कहा था, इसके एक एक शब्द भगवान का स्वरूप है. आप ये निश्चित रूप से 1, 2, 3, 4 जितनी आपको दूसरों को भेंट देनी है, अब दूसरे को भला चाहते हो, ये प्रतियां इस महीने में गीता जयंती का महीना है, ये आप दूसरों को पहुंचाएंगे भगवान की प्रसन्नता को, भगवान के प्रसन्नता को प्राप्त करेंगे. आपका हृदय भी पवित्र हो जाएगा, भगवान भी प्रसन्न होगा, आपका जन्म सफल हो जाएगा. इन शब्दों के साथ त्रियोली के भक्तों का हम धन्यवाद करते हैं. दया सिंधु और कृपा और क्या दया सिंधु और दूसरे के नाम राधिका रमन प्रभु और आप सब भक्तों का जिन्होंने 2 दिन से आज आप कल से बहुत ज्यादा आए, आपने वायदा निभाया है. तो अब ये वायदा भी निभाना है कि निश्चित रूप से आप यहाँ आके हम बैठेंगे आधा घंटा भी, अगर आप एक एक अगर कि आपको आना है गीता लेनी है तो ये आप एक बहुत बड़ा यज्ञ में भाग लीजिए. हरे कृष्णा, धन्यवाद. किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए, आप उठाइए माइक, पूछिए प्रश्न क्या और कौन कौन गीता लेने आता है. मैं पेन निकाल के बैठता हूं, लेकिन सबको लेनी है.